ओम शांति। सबको दिवाली की बहुत 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 बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। विशेष अवसर पे आप सबका आना हुआ है। सीजन के फर्स्ट टर्न में आप आए और दिवाली का भी बड़ा अच्छा मौका मिला। कितने दिन ये अच्छे हैं, ये दिन अच्छे हैं, अच्छे दिन है ना। ये कल्प के सबसे सुनहरे दिन है, सबसे प्यारे दिन। शायद इससे अच्छी घड़ी कभी और ना रही होगी, है ना, और अच्छे से अच्छे होंगे, लेकिन इससे अच्छी घड़ी कभी मिली नहीं थी। किसको ऐसा लगता है कि ये पल सबसे अच्छे हैं, कल्प का सबसे सुंदर दिन, सबसे 5000 साल का सबसे प्यारा दिन है जो अभी हमारे हाथ में है। किसको लगता है, हाथ उठाए। बहुत अच्छा, बधाई हो ऐसे दिन के लिए। कल्प की सबसे सुनहरे दिन सबसे अच्छे दिन है। क्यों सबसे अच्छे दिन है, कौन बताएगा आप में से, हैं? बताओगे अभी ये? आओ आइए, आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी यार। बहुत अच्छा, क्या बात की। अच्छा, यहां से बाहर गए तो क्या होगा, और भी सबसे अच्छे दिन ये क्यों है, वो जब होगा तब होगा, कल क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे, हैं? ये दिन सबसे अच्छे दिन है क्यों, और बताओ, हैं? बताया ना आपने, दिवाली के दिन है, सबसे दुनिया की सबसे अच्छी जगह पर आए हैं, मधुबन में आए हैं और दादियों के सबसे ऊंची जगह पर आए हैं, सबसे बेस्ट जगह पे आए हैं, हैं? मधुबन में रह करके सबसे अच्छे दिन नहीं होंगे तो कब होंगे, हैं? और दिवाली के दिन पे आए हैं, हैं? दादियों का इतना प्यार मिलता है, वर्मा वालों को तो स्पेशल चांस मिलता है, देखो कितने अच्छे, स्पेशल ही कहेंगे, है ना? आप सब जब ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा, ताली बजाओ इनके लिए। यहाँ यहाँ आ जाएं, सामने आ जाएं, सब भाई पीछे वाले भी आगे आ जाएं, बहनें पीछे से आगे आ जाएं तो बहुत अच्छा है, और आगे आ जाएं, आगे आगे आ जाएं, हाँ ये खाली है इधर भी, बड़ी बहन जी यहाँ बैठ जाएं, ठीक है, हाँ तीनों भाई ये सामने आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आइए, आपसे बहुत अच्छी रूरिहान करनी है। सबसे अच्छा दिन है तो सबसे अच्छी रूरिहान चाहिए ना, ठीक है। कहते हैं जो बीत गया वो सपना है, और जो होगा वो कल्पना है, और जो है वो अपना है, ठीक है। जो बीत गया वो सपना, और जो होगा वो कल्पना, और जो है, हाँ क्या बात है। तो ये सबसे अनमोल क्षण है जो अभी हमारे हाथ में है, जिसने इसको सफल कर लिया उसको उसका हर पल सफल हो जाता है, हर पल सफल। तो ये जो पल मिले हैं, जो दिन मिले हैं, जीवन के सर्वोत्तम क्षण है, जब हम पूरे होशो हवास के साथ सबसे अच्छी जगह पर, कितना अच्छा मन मिला है, कितना अच्छा जो भी शरीर है इस समय, अगर शरीर अच्छा ना होता तो हम यहां ना होते, ठीक है ना। जैसा भी है, बहुत अच्छा है या नहीं है वो नहीं, लेकिन इस शरीर ने मदद की हमारी और आज हम यहां पर बैठे हैं मधुबन में सबसे अच्छे दिन के लिए। सबसे अच्छा हुआ ना, हाँ? तो ये भी बड़ा धन्यवाद के योग्य है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, इसका धन्यवाद, ठीक है, इसको एक बार धन्यवाद दे दो। ये शरीर है बाबूजी, ये शरीर जैसा भी है बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि इन कानों के द्वारा हम भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, इस शरीर के द्वारा सेवा में लग गए हैं, इस शरीर ने मुझे मधुबन में यहां आने का मौका दिया है, और इस मस्तिष्क ने, इस ब्रेन ने, इस शरीर ने मुझे कुछ सोचने, समझने, धारण करने, सुनने और समझने का अवसर दिया है। तो ये सबसे पल बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे पल हैं। आज से 25-20 साल पहले, 20 साल पहले डायमंड हॉल बना था और मैं पीछे बैठा था, एकदम पीछे बैठा था, बीचों बीच में जमीन पे बैठा था, कोई हमको देख रहा था नहीं देख रहा था मालूम नहीं, बस मैं बैठा था। मैंने कहा कितने अच्छे पल हैं, बाबा सामने हैं, बाबा आए थे, तो मुख से निकलता है ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए, जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवान, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए, गगन झुक गया वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी जैसे जमी रह गई है, हैं? समा देखते देखते रूहानी समा देखते देखते ये आंखें खुली की खुली रह गई है ना। तो ये पल सबसे हमारे अनमोल पल है, सबसे अनमोल पल, इन पलों को सफल कर लें, न कल की चिंता में रहें और न कल की फिक्र में रहें, जो होगा वो अच्छा ही होगा और हमारा तो अच्छा हुआ ही हुआ है, अच्छा है ना, हमारा सब अच्छा है, क्योंकि हमसे अच्छा कोई दुनिया में है नहीं, हमसे अच्छा कोई है नहीं, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना नहीं है, वो दुनिया वाली बात अलग है, हमसे मना हम सब ब्राह्मणों से अच्छा दुनिया में कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। मैं अपनी दिनचर्या को देखता हूं सुबह से शाम तक, आप सब तो वर्मा में है, है ना, आपको हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम वर्मा के रतन नहीं, हम ब्रह्मा के रतन हैं, समझा ना, जब भी कोई वर्मा कहे समझो अंदर ब्रह्मा, वो ब्रह्मा ही है, वर्मा हो गया बाद में, है ना, तो हम सब ब्रह्मा के हैं, ब्रह्मा के हैं, है ना, ठीक है ना भाइयों, है? आपको बहुत बहुत बधाई, इसके लिए भी बहुत बधाई। और आप जब सवेरे एक साथ बोलते हैं मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति, कितना अच्छा लगता है, मन कहता है सुनते ही रहें, है ना, कितना अच्छा लगता है ना, ये भी बहुत अच्छा है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। तो आज हम बात कर लेते हैं एक शक्तिशाली अमृत वेला कैसे बनाया जाए। हम सब जानते हैं कि ईश्वरीय जीवन में दो सबसे बड़ी धारणाएं हैं। प्रथम धारणा है अमृत वेला सफल और शक्तिशाली, ये अमृत वेला हो जाए अच्छा, और बाबा की मुरली हमारी जो प्राणदायिनी है, जो जीवनदायिनी है, जो हमारे जीवन का आधार है, जो वो हमारे लिए प्राण है, या यूं कहिए जो भगवान से प्यार पाने का आधार है, जो परमात्मा का प्रेम पत्र है, जो हम सबके लिए आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हमारी दिनचर्या को बताती है, जो हमें करना क्या है श्रीमत देती है, ये बाबा की मुरली। तो अमृत वेला भी हमारा अच्छा हो और बाबा की मुरली में हम मगन हो जाए, फिर उसको दिन की दिनचर्या में कभी भी कोई शिकायत करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अगर ये दोनों आपके सफल हो गए तो ठीक है ना। ब्राह्मणों का यही सबसे बड़ी बात है। कोई कहे कि हम ब्रह्मा कुमार हैं और अमृत वेला होता ना हो, कभी होता है कभी नहीं होता है, और मुरली कभी होती है कभी नहीं होती है, तो उनको ब्रह्मा कुमार कहा जाए? नहीं कहना चाहिए। मैं तो ये जानता हूं क्योंकि यही दो चीज तो है जिससे हम ब्राह्मण बनते हैं। ठीक है, अब पहली बात पर आते हैं कि अमृत वेला कैसे सफल हो। अमृत वेला सबसे बड़ा जो विघ्न पड़ता है, आप सब जानते हैं कौन सा विघ्न है। अमृत वेला विघ्न कौन सा है? नींद का है? उसको हम एक शब्द में आलस्य कह सकते हैं। आलस्य, नींद तो करना बहुत जरूरी भी होता है। नींद अगर ना आए, किसी को सोने जाए और नींद ना आए तो परेशान व्यक्ति हो जाए है? और अगर नींद ज्यादा आए तो भी ठीक नहीं है, और नींद ना आए तो भी ठीक नहीं है। तो क्या कहना है, नींद तो आना चाहिए, लेकिन बाबा हम सबको चाहते हैं निद्रा जीत बनाना। निद्रा जीत क्या है? निद्रा जीत बनना, निद्रा जीत का मतलब यह है जब चाहें हम सो जाएं, जब चाहें तब जाग जाएं, इसको निद्रा जीत बनना कहते हैं। निद्रा भी हमारी कंट्रोल में रहे, हम फरिश्ता रहें, सोएं तो निद्रा योग हो। निद्रा योग का मतलब है कि निद्रा में भी योग हो, जैसे कर्म के साथ योग हो तो कर्म योग होता है, वैसे निद्रा में भी अगर योग हो जाए तो उसको निद्रा योग कहते हैं। और योग निद्रा क्या है? योग निद्रा है कि जब आप योग में बैठे तो आपकी निर्विकल्प समाधि हो जाए। अब योग में बैठे तो आप योग में भी आप रेस्ट कर लें, योग में भी आप नींद कर लें, उसको योग निद्रा कहते हैं। योग में नींद कैसे? कि जब हम अशरीरी बन जाते हैं और जब बीज रूप अवस्था में आ जाते हैं, जब हम बाबा की शक्तियों की किरणों के नीचे हम आ जाते हैं और एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसा बाबा के पास ऐसे गुम हो जाते हैं कि जैसे बाबा की किरणों के नीचे हम एकदम समा गए, देह और दुनिया का कोई भान नहीं, कोई भान नहीं, शरीर का कुछ भी भान है ही नहीं, और न तो देह का न दुनिया का, और यहां तक कि जैसे मैं बाबा में खो गया और बाबा मुझ में खो गए, दोनों एक हो गए। उसको कहते हैं तादात्म्य स्थिति कहते हैं। तादात्म्य माना उसी के साथ जुड़ जाना, इसको सारूप स्थिति कहते हैं, उसके ही रूपधारी बन जाना, इसको ही सायुज्य कहते हैं, जिसको कहते हैं जुड़ जाना, इसको ही सानिध्य कहते हैं, उसके ही निकट इतने करीब आ जाएं, उसको टच कर ले, टच कर ले, और इसको ही सामीप स्थिति कहते हैं, इतने समीप कि दोनों के बीच में कुछ रह ही न जाए। हम इसी को एकाकार भी कहते हैं, एक के आकार के हो जाना, दोनों एक दूसरे में समा जाएं। जब किसी से किसी का प्यार होता है तो प्यार का चरमोत्कर्ष यही स्थिति होती है कि तू न रहे, मैं न रहूं, दोनों एक दूजे में खो जाएं। हम बाबा में खो जाएं, बाबा की जैसे हो जाएं, बाबा में हो जाएं, इसी को तल्लीन स्थिति कहते हैं, इसी को लवलीन स्थिति कहते हैं, और इसी को दुनिया वाले लीन स्थिति कहते हैं। समझा ना? जब हम बाबा में खो जाते हैं, बाबा जैसे हो जाते हैं, बाबा में समा जाते हैं, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल झरनों के नीचे, ज्योतियों के देश में ज्योति का डेरा है, किरणों की बाहों में अब तो बसेरा है। ओ बाबा, आपके प्रेम ने घेरा है, मन जा नहीं सकता मायावी हिरणों के पीछे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल झरनों के नीचे। रोशनी में आपकी जैसे हम नहाए हैं, किरणों की बाहों में जैसे हम समाए हैं, ओ बाबा देह दुनिया सब हम भुलाए हैं, ज्यों कायनात ही आ गई, कायनात माना सृष्टि, ज्यों कायनात ग्लोब, ज्यों कायनात ही आ गई है चरणों के नीचे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल 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 झरनों के नीचे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल झरनों के नीचे, झरनों के नीचे। मगन स्थिति है, इसी स्थिति को बीज रूप अवस्था कहते हैं, इसी स्थिति को सर्वोच्च पद कहते हैं। सारा संसार परम पद चाहता है, सबकी एक ही ख्वाहिश होती है, आत्मा की अंतिम भूख एक होती है। जैसे एक बच्चे की एक ही भूख होती है कि मुझे खाना मिले न मिले, मुझे दुनिया मिले न मिले, मुझे कुछ और मिले न मिले, लेकिन मुझे माँ की गोद मिल जाए। अंतिम जो लक्ष्य है बच्चे की, बच्चे का, वो होता है कि मां की गोद। मां की गोद में पहुंचने के बाद बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए, संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, जितना सुख मां की गोद मिलती है। और यही हर जीवात्मा, हर आत्मा, हर जीवात्मा की यही ख्वाहिश होती है कि मुझे मेरे मात पिता का आंचल मिल जाए, परमात्मा, वो भी मां है, परम आत्मा, आत्मा भी मां है, वो अंतिम मां, वो सबसे बड़ी मां वो है, वहां तक पहुंच जाए, उसके पास आ जाए, उसमें समा जाए, उसमें लीन हो जाए, सब भूल जाए, यही सबसे बड़ी व्यक्ति की ख्वाहिश होती है, आत्मा की सबसे बड़ी यही इच्छा है, आत्मा की यही सबसे बड़ी, रूह की सबसे बड़ी यही तमन्ना होती है, है ना, है ना, यही है ना, यही होती है ना, सबको अनुभव है ना, मां की गोद से बड़ी प्यारी कुछ भी जगह नहीं होती है। सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ वो स्थान है। तो हम सबको प्यारे बाबा की गोद, सवेरे हम जब याद में बैठे, अमृत बिला बैठते हैं, तो सबसे बड़ा जो विघ्न पड़ता है वो आलस्य का पड़ता है। आलस्य, ये पांच विकार तो हैं, छठा विकार है, या यूं कहिए ये पहला विकार है, सबसे बड़ा विकार है। हम सब ज्ञान में चल रहे हैं, हम सब योग में चल रहे हैं, धारणा और सेवा में चल रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, लेकिन हम में नंबर वार है कि मैंने अपने आप को कितना जान लिया है, हम नंबर वार जानते हैं। बाबा को हमने कितना जाना है, हम में से नंबर वार जानते हैं। प्रकृति को और इस ज्ञान को हम में से नंबरवार जानते हैं, निश्चय भी हम में से नंबरवार ही है। समय का भी ज्ञान और भान हम में से नंबरवार ही है। जो जितना सही समझ ले, स्वयं को समझ ले कि मैं आत्मा हूं क्या, मैं आत्मा हूं क्या, वो निरंतर आत्मज्ञानी बन सकता है। जो समझ ले कि मैं हूं क्या, मैं आत्मा हूं और आत्मा में ही मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वदेश क्या है, मेरा स्वलक्ष्य क्या है, मेरे स्वलक्षण क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, जितनी गहराई ये पकड़ में आ जाए उतना ही हम आत्मभिमानी बन जाए। ये है आत्मभिमानी बनना। जब हम योग में बैठते हैं, याद में बैठते हैं, तो बहुत ज्यादा विस्तार में न जाए, केवल अपने चिंतन में आ जाए। जिसको मैं एक शब्द में अगर कहूं तो वह है आत्मचिंतन में बैठे, आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, आत्मदर्शन करें, आत्म अन्वेषण करें, खोज। आत्म अन्वेषण, अन्वेषण माने खोज, अंदर खोजे, तलाश करें, अंदर की अच्छे अच्छे संस्कारों की तलाश करें, आत्म विश्लेषण करें, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, अपने को शरीर से अलग करें। मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, पुरुषार्थी शरीर, सामने संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर कहता है आओ मुझ में समा जाओ, मैं संपूर्ण शरीर में अपने समा जाता हूं और एकाकार हो जाता हूं। मैं संपूर्ण शरीर में खड़ा होता हूं, सामने अपने दर्पण में जैसे देखता हूं तो मेरा पुरुषार्थी शरीर होता है। संपूर्ण शरीर में आकर के अपने पुरुषार्थी शरीर को देखता हूं, कहता हूं और रोशनी बढ़ाओ, अपने आप को बोलता हूं, पुरुषार्थी शरीर को बोलता हूं, ठीक है सतीश, ठीक है पुरुषार्थ कर रहे हो लेकिन समय बहुत कम है, जल्दी करो, जल्दी करो, ऐसा बनो, इतनी लाइट होनी चाहिए, इतनी चमक होनी चाहिए, समझा समझा समझा। स्वयं की स्वयं से बात, मेरा अपना संपूर्ण शरीर, मैं संपूर्ण शरीर में हूं और जैसे शीशे में रोज चेहरा देखता हूं ऐसे मैं अपने शरीर को देखता हूं। क्या कर रहे हो, देर मत करो, ठीक है अच्छा कर रहे हो लेकिन जल्दी करो, समय बहुत कम है, अगली दिवाली नहीं आने वाली है। ये वार्तालाप, इसको सेल्फ एनालिसिस कहते हैं, विश्लेषण करें, आत्मा को अलग करें, शरीर को अलग करें, सूक्ष्म शरीर लेकर के देखें, मेरा अंतिम शरीर का अंतिम समय चिता पर शरीर लेटाया जा रहा है, मैं पूरे दृश्य को देख रहा हूं, पूरे शरीर को देख रहा हूं, पूरे दृश्य को देख रहा हूं, मैं सूक्ष्म शरीर लेकर के अपने अंतिम संस्कार की तैयारी देख रहा हूं, मैं अलग हो जाऊं शरीर को देखूं, इसको विश्लेषण कहते हैं। देखें, एनालिसिस करके देखें, मैं शरीर से अलग हूं, ये भान पक्का करें, ये भान पक्का करें। यहां याद में बैठे हैं, ऊपर यहां पर ही शरीर को सूक्ष्म शरीर लेकर के यहां खड़े हो जाए, यहां से देखें, देखें मेरा शरीर बैठा है, ऊपर से देख रहा हूं, ये माइक लगा है, ये शरीर बैठा है, सब भाई बहने बैठे हैं, मैं ऊपर शरीर नीचे, ये मैं देख रहा हूं, ऊपर से नीचे देख रहा हूं। इसको विश्लेषण कहते हैं। अपने आप को शरीर से विच्छेद करें, अलग करें, इसको करें। जब फ्लाइट में बैठें तो देखें कि अब मैं, नाम तो ये फ्लाइट है लेकिन मैं वतन में जा रहा हूं, इस बुद्धि के विमान पे बैठा हूं और शरीर नीचे छोड़ रहा हूं, एरोड्रम पर ही है, और ये प्लेन जो है, इस प्लेन में मैं सूक्ष्म शरीर लेकर के अब उड़ गया हूं, अब उड़ रही हूं, अब उड़ रही हूं, अब उड़ी, देख धरती से जैसे ही प्लेन उठे तैसे लगे कि मैं सूक्ष्म शरीर लेकर के उड़ गई, और ज्यों ज्यों उठता जाए यही महसूस करो कि शरीर नीचे, संसार नीचे, और मैं उड़ चली। जैसे जैसे प्लेन उड़ता जाए ऊपर देखते जाए कि मैं और ऊपर और ऊपर और ऊपर, माइलों 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 मैं बहुत ऊपर उड़ते जा रहे हूं, मैं सूक्ष्म लेकर के अब तो मैं परमधाम के भी करीब आ रहे हूं। भले प्लेन न जा रहा हो लेकिन अपने बुद्धि के प्लेन में और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, अब मैं जैसे मैं लाइट के नीचे आ गई हूं, बाबा के पास आ गई। ये प्लेन चलता रहना चाहिए, ये विश्लेषण चलना चाहिए, इसको कहते हैं आत्मविश्लेषण करना, आत्मविश्लेषण करना, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मदर्शन, आत्मअन्वेषण, आत्मविश्लेषण, आत्म संशोधन, आत्म परिमार्जन। संशोधन, संशोधन माना शुद्ध करो, शुद्ध करो आत्मा को। रोज कपड़े में दाग लग जाता है, साड़ी में दाग लगेगी तो कितना धुलाई करते हैं, कोई कोई दाग तो बड़ा गहरा लग जाता है, उसको ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ता है, ब्लीचिंग डालते हैं तो साफ होता है, और कोई तो ब्लीचिंग डालने से भी साफ नहीं होता है, लगता है वो कपड़े के साथ ही साफ होगा, वो खत्म ही नहीं होता है। सोचो आत्मा में जो मैल है कौन धुलाई करता है, कौन सफाई करता है, कितना सफाई करूं, जितनी सफाई करो उतना कम है, इसको आत्म संशोधन कहते हैं। एक है आत्म परिमार्जन, आत्मा को माजो, बर्तन जिसे तांबे का कोई लोटा होता है उसको जितना साफ करो उसमें चमक और अच्छी बढ़ती जाती है, स्टील के बर्तन को भी जितना अच्छा साफ रखो उतनी चमक आती है। हम आत्मा को चमकाएं, ये अमृत बेला चमकाने की बेला है, रोज चमाएं इसको ताकि दिन में जब भी देखें आहा कितनी चमक है, कितनी रोशनी है इसमें, कितनी लाइट आ रही है, इसको कहते हैं आत्म परिमार्जन। फिर है आत्म परिवर्तन, ये प्रक्रिया, ये प्रक्रिया अंदर में चलती रहनी चाहिए। फिर से बताऊं, आत्मचिंतन करें, आत्मचिंतन। भीड़ में बैठे हैं, एकांत अंदर में ले ले, एक के अंत में, अंदर में देखें कि मैं अपनी आत्मा को देख रही हूं, मैं अपनी आत्मा को देख रही हूं, किस आत्मा में अभी कितने कालिमा, कितनी कालिख, कितनी कलुष, कितनी कलुषिता, कितनी भरी है इसमें, इसमें देखें कि कितनी इसमें लाइट आती जा रही है। रोज चेक करें कि आज मैंने कौन सा गुण, आज किस गुण विशेष की कितनी धारणा की, क्या मेरे अंदर सहन शक्ति आ गई, क्या मेरे अंदर समानिक शक्ति आई, क्या मेरे अंदर सहन शक्ति आई, क्या मैं निर्णय शक्ति में प्रवीण होती जा रही हूं, क्या मुझ में परखने की शक्ति बढ़ रही है, क्या मैं सहयोगी बन गई हूं सबको। अब हमको अपने लिए कुछ जीना ही नहीं, मेरा श्वास, मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा सुनना, मेरा करना, सब कुछ सबके सहयोग के लिए लग गया है, क्या मैं इस स्थिति तक पहुंची हूं, अब मेरे लिए कुछ भी नहीं करना है मुझे, सब सबके लिए। अब इस शरीर में हम प्राण धरे हैं तो प्यारे बाबा आपके लिए और आपकी सेवा के लिए, तन में पुराने ठहरे हैं हम जग परिवर्तन के लिए के खातिर, ये ख्याल रहे। और इसकी सबसे अच्छी रूपरेखा मैं बता देता हूं आपको, एक बहुत अच्छी अच्छा गुण है, दिन भर में कुछ और ना आए तो कोई बात नहीं, एक संकल्प ले। मैंने पिछली बार भी बताया आप सबको कि उठते ही सबसे पहले बाबा को नमस्ते कर ले। बाबा को नमस्ते कहां करें? वतन में करें, वतन में करें। कैसे करें? वतन में, वतन में उठ जाइए। बहुत सवेरे उठने की ज्यादा जरूरत नहीं है, 3:30 बजे उठ जाएं, जब रिकॉर्ड बजता है अलार्म लगा दें, कुछ भी करके 3:30 बजे उठ जाएं। उठने के बाद फ्रेश हो लें, 4 बजे तक फ्रेश हो लें, 4 से 4:45 बजे तक योग करें। यह अमृत वेला का समय है। कई भाई बहने 2 बजे उठ जाते हैं, बहुत जल्दी अर्ली उठ जाते हैं। आप उठ सकें, फ्रेश हैं तो उठने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन इतने नियम करें जो मधुबन का नियम है कि 4 से 4:45 बजे तक पौना घंटा आपको नींद योग करना अच्छा करना है। यह है अमृत वेले का समय। बहुत सारे लोग पहले उठ जाते हैं और इस समय सो जाते हैं, कुछ लोग हैं वो ठीक नहीं है। आप 4 से 4:45 बजे तक योग करें, और योग के बाद यदि आप रात को जागे हैं, दिन में सोने का मौका नहीं है और आपके शरीर की डिमांड होती है कि मैं बहुत थकी हूं, मुझे नींद चाहिए, और तो अगर अमृत वेले के बाद सोना है तो सो जाइए, सोने में कोई पाप नहीं। कई लोग बहुत पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, भाई अमृत वेले के बाद सो सकते हैं, सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? क्योंकि अगर आदत नहीं है या सो जाते हैं आप, तो कईयों को बड़े उठपटांग सपने आने लगते, थोड़ी देर में बड़ा गजब का लगता है, बड़ा विचित्र होता है। लेकिन अगर इस समय पर आप 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा रेस्ट कर लिए और आप दिन भर के लिए फ्रेश हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छा है, सोने में कोई पाप नहीं। हमारे ब्राह्मणों के लिए जो सवेरे 3:30 बजे उठ जाते हैं और रात को 10:30 बजे तक सोते हैं, उनको दिन में भी रेस्ट करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हर भाई बहन को जो छोटी उम्र के हैं, हमारी बहनें हैं, इन सबको कम से कम 6 घंटा 6.5 घंटा नींद आपको 24 घंटे में से चाहिए ही चाहिए। अगर कोई निद्राजीत बनना चाहे कि ऐसे कि मैं 6 घंटा नींद न करूं और फिर भी निद्राजीत बन जाऊं, ऐसा नहीं, उसको निद्राजीत नहीं कहते, ये प्रकृति है, प्रकृति की अपनी डिमांड है। अगर आपने 6 घंटा नींद नहीं किया तो आप अपने शरीर को टॉर्चर कर रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, और एक प्रकार से देखें ये शरीर तो आपका है ही नहीं, आपने जन्म लेते ही ज्ञान में आते ही इस शरीर को बाबा को दे दिया कि बाबा मैं आपकी हो गई, ये शरीर आपका हो गया, तो ये शरीर आपका नहीं, फिर ये बाप का हो गया। फिर इस शरीर की संभाल करना, इसकी सुरक्षा करना, समय पर भोजन देना, समय पर संभालना, इसको चारों तरफ से लोगों की दृष्टि से बचाना, बुरे कामों से भी बचाना, स्वास्थ्य के लिए संभालना, सही समय पर नींद देना, प्रॉपर देना, ये आपकी ड्यूटी हो जाती है, समझा? भोजन खाएं तो ये देखें, ये नहीं मैं खाऊं, मैं बड़ी कमजोर हूं, ये खा लूं तो थोड़ा अच्छी हो जाऊं, ये नहीं। भोजन खिलाइए कि ये बाबा का रथ है, ये बाबा की अमानत है, ये बाबा की सौगात है, इसकी संभाल करनी मेरी ड्यूटी है, इसकी रक्षा करनी है। मैं खा के तंदुरुस्त हूं नहीं, वो देहभान का है, लेकिन इस शरीर को संभाला जाए, कल बाबा कहें बच्ची तो तुमको जो मैंने सौगात दी थी, संभालने का, तुमने मुझे दिया, मैंने कहा बच्ची संभालो, ध्यान रखना ये तुम्हारा नहीं, ये मेरी सौगात हो गई, इसको मैं जब मांगू तो मुझे दे देना, वापस करना, तो मैं सही समय पर दे सकूं उसको। अगर इसकी संभाल न किया, बीमार कर दिया, तो मैं कल क्या जवाब दूंगी बाबा को? समझा? समझा बहनो? हाँ, ये सीक्रेट है कि आपको संभालना भी है, लेकिन मैंपन से नहीं, मेरेपन से नहीं, ये बाबा का रथ है ना? क्या है, किसका रथ है? हाँ, ये बाबा का रथ है, ये हमारा नहीं है। मैंपन आया, गुलदस्ता मुरझाया, इससे मैं और मेरा से मुक्त होने का एक ही मार्ग है। ये आपकी चीज तो है ही नहीं, ये तो बाबा की चीज है, जिसको संभाल करना आपका काम है। जब आप इसको भोजन खिलाएं तो ऐसे खिलाएं कि ये मेरा शरीर नहीं है, ये बाबा की चीज है, इसको खिलाना मुझे। तो जब इस व्यू से आप खिलाएंगी तो आपका मैंपन मेरापन भी नहीं होगा, और आप क्या करेंगे, इसको संभाल भी सकेंगे अच्छी तरह से, मैंपन मेरापन नहीं होगा। तो जो रात को ज्यादा जगते हैं, अमृत बेला जाग लेते हैं 2 बजे 1:30 बजे, इतनी कोई आवश्यकता नहीं। मेरा तो अपना मानना है कि आप जब से आपकी आंख खुलती है और जब तक आंख बंद होती है, सारे दिन में आपको योग करने के लिए बहुत समय है। आप चलते फिरते उठते बैठते याद कीजिए, आपको जबरदस्ती 4 घंटा बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई भाई बहने 8 घंटे बनाने के चार्ट के लिए सोचते हैं, 4 घंटा बैठ के बना लेते हैं, 4 घंटा बना ले, बन सके तो बनाइए, कोई हर्जा नहीं, लेकिन 4 घंटे बैठना ही बैठना है, कोई आवश्यक नहीं। होना तो ये चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते हमारे मन की तार जुटी रहे, क्योंकि निरंतर योग बैठ के नहीं हो सकता है, निरंतर योग तो चलते फिरते कर्म करते ही हो सकता है। जो आपको 1.25 घंटा अमृत बेले मिलता है, वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है कि इसमें शक्तिशाली इतना कर लें, इतना आनंद आ जाए कि आपका दिन भर में योग होता रहे, चलता रहे। सवेरे आपने निर्विघ्न होकर के बाबा से सब शक्तियां ली, बाबा के साथ बैठे और दिन भर में आप देना शुरू कर रहे हैं, जो स्टॉक भर लिए आप अब उसको बांट रहे हैं दिन भर। 1.25 घंटा योग करें, लेकिन आलस से मुक्त योग करें। 1.25 घंटा योग करें, लेकिन बाबा में खो जाएं। 1.25 घंटा तक ही योग करें सवेरे का अमृत वेले का, लेकिन इतना आनंद आ जाए कि आज आपकी जो ये अमृत वेला जो समय है, ये बाबा ने विशेष अपॉइंटमेंट दी थी, मैं बाबा के साथ बैठ गई और बाबा के साथ इतना आनंद आया है कि वो मस्ती में सारा दिन आपका नशा उतर ही नहीं रहा है। ये अमृत वेला होना चाहिए। एक शक्तिशाली अमृत वेला बनाने के लिए ऐसा नहीं उठ गए और आप काम हो गया, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। जब दिन अच्छा होगा आपका तो अमृत वेला भी हो सकेगा। कोई दिन भर बहुत परेशान रहे, मूंझा रहे और सवेरे बैठे और योग में बैठे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, नशा ही नहीं चढ़ेगा आपको, मजा ही नहीं आएगा। जो दिन भर में किसी को दुख देता हो, दिनचर्या अच्छी ना होती हो, या दिन भर में रोता ही हो, या दिन भर में बीच में उसको स्ट्रगल करना पड़ता हो, सारा दिन एक बार भी बाबा को याद किया ही नहीं, कुछ भी याद नहीं किया, और सवेरे अमृत वेले पावरफुल योग कर ले, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है। एक शक्तिशाली अमृत वेले का आधार है शक्तिशाली दिनचर्या होना, और शक्तिशाली दिनचर्या का आधार है शक्तिशाली चिंतन। जो ज्ञान से अपने आप को भरपूर करते हैं, जो अपने लक्ष्य को अच्छा बना रखते हैं, बना के रखते हैं, जो एक अच्छी दिनचर्या बनाते हैं, मधुबन की दिनचर्या को अपनी दिनचर्या बना लें। वहां लिखा हुआ है बोर्ड पर मधुबन की दिनचर्या क्या है, उसी दिनचर्या को फॉलो करें। उसमें लिखा ही नहीं कि आप 2 बजे 3 बजे बैठो, लिखा है 3:30 बजे रिकॉर्ड बजता है उठ जाओ, 4 से 4:45 बजे तक योग कर लो, इस समय पर मुरली कर लो, बाकी कर्मयोग करते रहो। क्लास मिले तो क्लास करो, गिलास मिले तो गिलास ले लो, है ना दिनचर्या। कितनी सी दिनचर्या है, उसमें आराम भी लिखा है 2 से 4 के बीच में। आराम मिले तो आराम कर लो, ना मिले तो जल्दी सो जाओ शाम को। अब कहो भैया आराम जल्दी से मिलता है नहीं, अब मैं वर्किंग में रहती हूँ, आप तो क्या है मधुबन में रहते हो, कभी भी सो जाओ। हम तो वर्मा में रहते हैं, वहां सब कुछ सेवा भी करनी पड़ती है, सारा काम करना पड़ता है, कोई नौकरी भी करना पड़ता है। रात को 11 बज जाते हैं, दिन में छुट्टी नहीं मिलती है, अब अमृत वेला कैसे करें हम? ऐसा है, ऐसा है किसी का? ऐसा नहीं है ना। हाँ, आप ये समझ लीजिए, ज्ञान में आने के बाद कोई एक्सक्यूज है नहीं। एक बॉम्बे में मैं भाई के पास गया, एक्सक्यूज माना कोई बहाना नहीं कि मेरा ऐसा होता है, भैया मैं दवाई खाती हूं ना तो बहुत नींद आती है, अमृत वेला उठा नहीं जाता है। नहीं, कोई चारा नहीं, अमृत वेला उठना ही उठना है। चलो मिस हो गया तो तोबा तोबा ना करे, हाय हाय मेरा तो अमृत वेला चला गया, अब मैं सवेरे किसको मुंह दिखाऊं, ऐसा नहीं, ये भी नहीं। जिस दिन अमृत वेला मिस हो जाए उसमें 2-4 दिन 2-4 घंटे और योग कर लो, वो सजा अपने आपको पनिशमेंट दे दो कि मुझे आज अमृत वेला गया तो आज मुझे 1-2-3 घंटा और योग का चार्ट बढ़ाना है ना। लेकिन लक्ष्य हो कि ब्राह्मण जीवन में संगम युग में अब आज से अमृत वेला मिस नहीं करना है, ठीक है ना? ठीक है बहनों, हाँ अपने आप को स्थिर रहना। अगली बार फिर मिलेंगे, मेरी बात याद रखना, तो मैं अपनी तरफ से जरूर इनाम दूंगा। बाबा दादियां दें, जब देंगे वो तो देंगे, बाबा देता ही है, लेकिन हम भी आपको इनाम देंगे, ओके, जो कभी भी साल भर अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। ताली बजाएगी। ठीक है, अब ये बताइए, मैं बताना चाहता हूं कि संकल्प तो आपने ले लिया, अब अमृत वेला अच्छा बनाए। तो मैं जैसे बता रहा था 5 बात मैंने पहली बार पिछली बार बताई थी ना, 5-7 बात फिर से नोट कर लें, बहुत अच्छी बात है वो, और वो नोट करने लायक नहीं, धारण करने लायक है। पहली बात मैंने बताया कि उठते ही आप सबसे पहले बाबा को नमस्ते करें, और एक बार नहीं 8-10 बार कर लें, जब तक आप पूरे आंख अलर्ट ना हो जाए। और अच्छा है तो ये जो विजन मैं बता रहा हूं इसको क्रिएट कर ले। आप वतन में रात को सोए तो रात को सोते समय ऐसा सोए कि जैसे मैं चारपाई पे नहीं सो रही हूं, गई वतन में और बाबा के पास सो गई, बाबा ने सुलाया, सो जा राजकुमारी, सो जा। है भाई, अपने को राजकुमारी बना लेना, कोई बात नहीं, बन सकता है ना भाई, ठीक है ना? ये राजकुमारी बने रहेंगे, राजकुमारी बन जाना, ठीक है ना? बाबा के पास बस सो जाना। बाबा ने सुलाया, सवेरे आंख खुली, बाबा ने उठाया जगाया, मेरे लाडले जागो, और आप ऐसे वतन में आपकी आंख खुलती है और सामने बाबा की गोद में, बाबा सारी रात आपने मुझे अपनी गोद में सुलाया, खुद जागे रहे मुझे सुलाया आपने, कैसी माँ है आप, कैसे पिता है, वाह बाबा वाह वाह। ऐसे करके अलर्ट होकर के आंखें खोले, अभी आंखें खोले तो बाबा क्या करता है, बाबा खड़ा करता है आपको, आपको बाबा ने खड़ा किया, पुचकारा, पोछा, हाथ हाथ लगाया, पुचकार करके ऐसे दोनों हाथ से, बेटा लाडले बेटा जागो जागो जागो, देखो वाह, मेरी तरफ देखो देखो, आप देखने लगे, ठीक है। फिर क्या करता है बाबा, यहां से तिलक लिया, तिलक लगा देता है, आपका माथा चमकने लगा, वाह क्या बात, कितना अच्छा लग रहा है, वाह राजा बेटा देखो कितना चमक रहा है। अच्छा, फिर क्या करता है बाबा, बैठा है, अपना ताज बाबा लेता है, यह ताज होता है ना, ताज आपके सिर पे रख देता है।
वाह तो और अच्छा लगता है, वाह राजा बेटा वाह, तो और अच्छा लग रहा है। फिर बाबा क्या करता है, बेटा आओ, ऐसे खूब प्यार करता है और गोद में बिठा लेता है, गोद में। कितना प्यारा है, कितना लाडला बच्चा है, बहुत प्यारा है, हैं? वाह वाह राजा बेटा, वाह राजा बेटा, आपको तैयार करता है। बेटा आज मैं नहीं जा रहा हूं, आज तुमको जाना है धरती पर, आज मेरी जगह पर तुम जाओ, तुमको वही करना है जो मैं करना चाहता हूं, तुम मेरा ही स्वरूप हो, मेरे बेटे, मेरा राजा बेटा, जाओ। पीठ ठोकता है बाबा और वहां ऊपर से विदा करता है और आप ऊपर से अवतरण होता है। आपका ये समान, ये जो दृश्य है, इसको जितना अच्छे से अच्छा आप बना सकेंगे उतना आनंद से भर जाएंगे। और जब आप चारपाई पर से उतरे तो ऐसा लगे कि मैं चारपाई से नहीं उतर रहा हूं, मैं वतन से नीचे उतर रहा हूं, मेरा अवतार हो रहा है, ताज चमक रहा है, प्रकाश मेरे शरीर से चारों ओर निकल रहा है, मेरा मस्तक तेज यहां चमक रहा है, मैं मास्टर भगवान हूं, मैं अल्लाह लोग हूं, मैं अल्लाह लोग, हम अल्लाह लोग, मैं मास्टर गॉड हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं आया हूं, धरती पर आ गया हूं। अब आप यही दृश्य, अब रिकॉर्ड बजने जा रहा है, बैठ जाएं और इस दृश्य को इमर्ज करें, जैसे कैसे मैं बाबा सवेरे होता है और कैसे बाबा उठाते हैं, कैसे मुझे तैयार करते हैं। जब आपका अवतरण हो, ऐसा अनुभव कीजिए कि मेरा अवतार हो रहा है, मैं पवित्रता का फरिश्ता अवतरित हो रहा हूं, मैं मास्टर भगवान, मेरा अवतार हो रहा है। मेरे अवतरित होते ही पूरी धरती, पूरी कायनात प्रफुल्लित हो रही है, प्रभु स्पंदित हो रही है, आनंद से भर गई है। आहा, मेरे इष्ट देव आ रहे हैं। आपने देखा होगा कई फिल्मों में, हैं? भगवान का अवतार हो रहा है, उधर सारे देवगण ऊपर आकाश में सारे फूल पुष्प वर्षा कर रहे हैं, इधर धरती पुलकित हो रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं, जैसे मगन हो गए हैं। कुछ ऐसा दृश्य अपने सामने इमर्ज कीजिए कि मेरा अवतरण हो रहा है, मेरा अवतार हो रहा है। ठीक है, तो उस समय देखिए, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं महान और मेहमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं महान हूं, मैं पवित्रता का अवतार हूं। ये रोज संकल्प, एक संकल्प, एक समान लें और दिन भर के लिए मगन कर लें अपने आप को, ये बहुत अच्छी स्थिति होगी आपके लिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये दृश्य इमर्ज कर लें, समान से भर लें अपने आप को और आपका दिन बहुत अच्छा होगा। पहली बात ये। दूसरी बात, अमृत वेला जब बैठे तो सबको देना प्रारंभ करें, देना ही देना है, कुछ और नहीं। ये नहीं परम धाम में जाओ, वो नहीं। सबसे सहज युक्ति है कि परम धाम को यहीं पर ले आओ, जहां बैठते हैं ऊपर जाओ नहीं, क्योंकि हम ऊपर जाएंगे तो फिर नीचे ही आना पड़ता है। जो ऊपर जाते हैं वो कहां आएंगे, नीचे आते, कोई जल्दी आ जाते हैं, कोई जाते हैं ऊपर है लेकिन नीचे ही रह जाते हैं, ऊपर जा ही नहीं पाते हैं, और कोई जा भी जाते हैं तो थोड़ी देर पहुंचे नहीं, वापस आ जाते हैं बहुत जल्दी, है ना। और कोई याद में जैसे लाइल लाइट हुई तैसे देखो मोती चुगना शुरू कर देते हैं, हंस मोती चुगना शुरू करते हैं, बड़ा गजब का लगता है ना। लेकिन इसको आपको अलर्ट बैठना, यहां बैठो, यहां बैठो माता जी, यहां इधर, अच्छा आराम से बैठिए। तो आपको ये सवेरे का जो दृश्य है बड़ा अच्छा इमर्ज करना है। तीसरी बात, पांच बात में से तीसरी बात, बाबा की मुरली पर बहुत अटेंशन चाहिए,
तीसरी बात बताइए, पहला उठते समान ले लें, ठीक है, सवेरे का दृश्य, दूसरा है अमृत वेला, और तीसरा है बाबा की मुरली, और चौथा है कर्म योग, कर्म करते हुए योग करना, जिसमें मैंने पांचों स्वरूपों का अभ्यास बताया था आपको, वो फिर से करते रहे बीच बीच में। मैं तो आपको प्रैक्टिकल भी कराना चाहता हूं लेकिन समय नहीं है, नहीं तो खड़े हों, एक सीढ़ी चढ़े, मैं ज्योति सितारा, फिर दूसरा पांव, मैं देव प्यारा, मैं पूज न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। आज का मेरा अभ्यास ही चल रहा है, सीढ़ी चढ़ता हूं तो पांच बार ऐसे कर लेता हूं, पांच सीढ़ी में पांचों स्वरूप, ये अभ्यास बहुत अच्छा है, नोट कर सकते हैं आप। मैं ज्योति सितारा करेंगे, फिर एक्शन करेंगे जैसे किया था, हाँ फिर से करें मेरे साथ, मैं ज्योति सितारा करें, एक बार बोलें तो, मैं देव प्यारा, मैं पूज न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। अच्छा लगा? हाँ, ये पांचों स्वरूप जो है अभ्यास करते रहे, ऐसे अभ्यास करने से नींद उड़ जाएगी, ठीक है ना। और पांचवी बात, कर्म योग करते हुए ये अभ्यास करते रहे। पांचवी और अंतिम बात है कि रात को सोने से पहले अपना सब बही खाता, सारा दिन भर का अकाउंट बाबा को दे दे, बोझ हल्का कर दे, बाबा को दे करके बाबा की गोद में बैठ जाएं, सबका धन्यवाद दें, बाबा आज का दिन बहुत अच्छा रहा। तो सबसे पहले शरीर का धन्यवाद दें, ठीक है, शरीर का धन्यवाद, पिछली बार दिया था, फिर देंगे और देंगे, हाँ ऐसे करें, अपना दाहिना हाथ बोलो, वाह मेरे शरीर, वाह मेरे शरीर, मेरे दोस्त, मेरे साथी, अंतिम जन्म के बड़े काम के हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, अभी तक साथ दिया, आगे भी साथ देना, तुम बैठे रहना, मैं निकल जाऊं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। दूसरा धन्यवाद, अपने सब संबंधियों को सबको दे देना, सबको, जो भी हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, जो खिला रहे हैं, जो कपड़ा साफ कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, हम लोगों को तो देखो मधुवन में सब कुछ बाबा देता है, कितना धन्यवाद किस किस का ना दूं। आज बाबा ने कहा, कल बाबा ने कहा, रिगार्ड सबका देना है, सबका रिगार्ड रखना है, छोटे हों बड़े हों, हमारे मन से सम्मान निकलना चाहिए। योग लगाना कोई योग लगाना नहीं, सहयोग देना ही योग है, सम्मान देना ही सम्मान पाना है, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट, सम्मान करें, ये हमारी बहन है सामने, इसको मैं सम्मान दूं। देखो कितनी छोटी सी उम्र में बाबा के पास आ गई, इसके मन में कितने कुतूहल होगी, कितनी इच्छा होगी कि मैं बाबा के बन जाऊं, मैं भी मम्मा जैसे बन जाऊं, हैं हैं, मेरा जीवन अच्छा बीते, मेरा अच्छा जीवन है, मैं शिवानी बहन बहन जैसे बन जाऊं, मुझे कोई देखे तो साक्षात्कार हो, बाबा मैं आपकी हो गई हूं, इसको कभी डर ना लगे, कभी इसके ऊपर मुश्किल ना आए, ये सदैव मुस्कुराती रहे, ये हमारी जो शुभ भावनाएं हैं, ये सम्मान की भावना है। हम एक दूसरे को सम्मान की भावना देखें, ये ना देखें कि छोटी दुबली पतली है, ये क्या करेगी, ये ऐसी है, पता नहीं क्या करती होगी, ऐसे नहीं, ये नहीं, वो भाव हमारे ऊंचे भाव, हर एक के लिए जितनी ऊंची भावनाएं होंगी उतना हम भजन। सवेरे यहां जब योग में बैठते हैं, जब दृष्टि देते, तो ऐसा नहीं कि मैं सबको देखता हूं या ढूंढता हूं कि आत्मा कहां है, आत्मा कहां है, ये ढूंढता नहीं हूं, दृष्टि देता हूं तो उनके साथ शक्ति देता हूं कि ये आत्मा का कल्याण हो। ये आत्मा जो बैठे, देखो बिस्तर छोड़ा, आलस से छोड़ा, यहां बैठे हैं बाबा, ये थोड़ा देर आलस तो आ रहा है, लेकिन इनको जगाइए, ये प्राप्ति होने की बेला है, ये निर्विघ्न बढ़े, इतनी शक्ति भर लें कि ये साल भर तक इनका खत्म ही ना हो, फिर आ जाए मधुबन में, है ना। तो ये एक दूसरे को शुभ भावना, मेरे मन से अंतर से, अंतर से निरंतर शुभ भावना का समंदर निकलता रहे, छलकता रहे, अंतर से निरंतर शुभ भावना का समंदर छलकता रहे, बहता रहे, सबके लिए शुभकामनाएं। आपको काम दिया था या नहीं दिया था, आप एक पेज में लिखिए, उसमें लिखिएगा अपनी डायरी में, शुभ भावनाओं के मोती। शुभ भावनाओं के मोती क्या है, जैसे मैं किसको देखूं तो उसके लिए मेरे मन में शुभ भावना क्या क्या निकल सकती है, वो निकाले निकाले, ये बढ़ती रहे, खुश रहे, बाबा सारा वर्षा लें, जब याद में बैठे तो बाबा में मगन हो जाएं, इनके ऊपर कभी विपत्ति ना आए, शरीर में कोई बीमारी ना आए, इनका दिन भी अच्छा हो, इनकी रात अच्छी हो, ठीक है। मैंने एक गीत लिखा है, गा दूं, गाने का मन कह रहा है, गाने का भी मन कह रहा है, ठीक है। हाँ, आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है, आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है, आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है, हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है, हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है, आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। बहुत अच्छा गीत है, फिर बाद में सुनाता हूँ, थोड़ा थोड़ा चखा चुखी कराता हूँ। ये बाबा ने कहा ना आज, मैं वो देता हूँ टेम्पटेशन, प्रलोभन, ताकि आप जागे रहें और आपका मन जाने का यहां से न करे, इसके लिए आपको बीच बीच में गाने का मुलम्मा देता हूं, ये लालच है, प्रलोभन जिसको कहते हैं, है ना भाई, ठीक है। तो आपको ये पांचों लास्ट में रात को सोते समय सबका धन्यवाद दे दे, सबका धन्यवाद दे, शुभ भावना के मोती नोट करें अपनी डायरियों में, ऐसे तो बहुत अच्छा है, जितनी आप शुभ भावनाओं के मोती लुटाते चलेंगे उतना आप संपन्न होते जाएंगे, मास्टर भगवान बन जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा, धन्यवाद दे दें प्रकृति को, ध्यान दे दें धन्यवाद प्रकृति, जिसने मुझे आज मौका दिया, सारा दिन आज जिसमें रहा, किसका क्या पता, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से कोई प्लेन आके गिर गया, कुछ हो जाए, कभी हो जाए, पेड़ गिर गया, छत गिर गई, अर्थक्वेक आया, पता नहीं खत्म हो गए सब, लेकिन आज प्रकृति ने मुझे मेरी पालना दी, अच्छी हवा मिली, मौसम अच्छा मिला, मधुबन का ये दिन मिला, भाई जी जाने वाले थे आज मैं स्टूडियो में जाने वाला था, वहां रिकॉर्डिंग टाइम रखा था, मैंने उनको बताया कि भाई मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आज बर्मा वालों क्लास है इसलिए आज मिलना है, तो ये भी दिन ये अच्छा मौका मिल गया, बाबा ने हमको अच्छा दिया है, उसके लिए हम सब प्रकृति को धन्यवाद दे दे, ठीक है ना, प्रकृति को धन। और चौथा धन्यवाद प्यारी बाबा को दे दे, वाह बाबा वाह, आपने तो कमाल कर दिया बाबा, आपने तो हमारा जीवन खुशहाल कर दिया, है ना, ज्ञान रत्नों से माला माल कर दिया, दादियों से बड़े भाई बहनों की नजरों से निहाल कर दिया, वाह बाबा आपने तो कमाल कर दिया, यही तो है, यही तो गीत है ना, यही गुणगान करना है, बाबा के गुण गाते रहे, सवेरे योग में बैठो तो यही कहो, बाबा मैं परमधाम कहां जानती नहीं हूं, बाबा मैं कितनी ज्ञानी हूं कितनी योगी हूं मुझे कुछ पता नहीं, बाबा दिन भर में मैं जो भी कर रही हूं पता नहीं पुरुषार्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे वो भी नहीं पता है, बाबा मुझे ये भी नहीं पता है मैं कहां पहुंचूंगी कहां जाऊंगी कितना पुरुषार्थ कर लूंगी मुझे पता नहीं, बस इतने पता है आप मेरे हैं मैं आपकी हूं, बस आप मेरे हैं मैं आपकी हूं, बाबा मैं बहुत अच्छा क्लास नहीं कराना आता है, मुझे ज्ञान सुनाना भी नहीं आता है बाबा, मेरी बुद्धि में बहुत ज्यादा ज्ञान आता ही नहीं है बाबा, मैं बहुत अच्छी सेवा करती हूं कि नहीं करती हूं मालूम नहीं, इतना जानती हूं कि मैं आपको अच्छी लगती हूं और इतना जानती हूं कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, बस और कुछ नहीं, बाबा मेरी तरफ देखो ना, मैं ना देखती हूं तो आप ही देखो ना मेरी तरफ, देखो ना बाबा आप देखो ना बाबा, है ना, ये खुल करके दिल की बात करना, इसको योग कहते हैं, योग माना नहीं कि मैं आत्मा हूं मैं शांत स्वरूप हूं पवित्र स्वरूप हूं मैं यहां ये सब नहीं, ये तो रटा रटा है, ये करते करते कितने साल बीत गए, हमारी तो उम्र बीत गई है ना, अब ये योग नहीं, अब योग माना प्यार की बात करो, जब योग में बैठे थोड़ी देर जो सामने दृष्टि दे रहा है देख लो थोड़ी देर, चलो फिर नहीं होता है ठीक है सोने से तो अच्छा है, मैं नीचे बैठी हूं ऐसे करके बैठी हूं सोच रही हूं बाबा बाबा आप कहते हैं अमृत बेला बड़ा पावरफुल करो, लेकिन बाबा मुझे बड़ी नींद आती है बाबा, आप ही बताओ ना मैं कैसे नींद से निकलूं, मेरा शरीर काम नहीं करता है, मेरी जान ही जैसे निकल जाती, बाबा ऐसी दृष्टि मुझे दो मेरी नींद उड़ जाए, देखो आपकी नींद उड़ जाएगी, उससे बात करें प्यार से बात करें, इन आंखों में नींद ना हो, इन आंखों में प्रेम के आंसू आ जाए, कमरे में बैठे आपका कमरा कमरे में बैठे आप कमरे में हैं, दरवाजा बंद कर दें, दरवाजा बंद कर दें, दरवाजा बंद करके गाना बजा दें, खूब डांस करो खूब डांस करो खूब नाचो, बाबा बाबा मैं आपके प्यार में मगन हूं, बाबा मैं मीरा हूं आपकी, मैं आपकी मीरा हूं, खूब नाचो, है ना, जब कोई देखे नहीं तो चलो मैं आत्मा हूं मैं महान आत्मा हूं मैं शिव शक्ति हूं ऐसे ऐसे करके चलो, नेचुरल अंदर से निकलना चाहिए, ये हमारे सोचने का हमारे जीने का एक अंदाज ही अलग है, अंदाज ही अलग है, हमारे बाबूजी बैठे हैं पीछे, बाबूजी आप खड़े हो जाएं तो, हाँ जी आप खड़े हो जाएं तो, हाँ खड़े हो जाएं बाबूजी तो, बाबूजी इतने खुश इतने अंदर से इतने ओरिजिनल है, जरा घूम जाए तो घूम जाए, हाँ देखो हाँ क्या बात, ताली बजाए इनके लिए, बैठ जाइए हमसे मिले सतीश भाई कितना अच्छा, तो बहुत मना जो कहते हैं अंदर से निकल रहा है, कुछ बनावट नहीं कुछ नहीं, फ्रैंक हमको भाषा नहीं आती तो क्या हुआ, टेढ़े मेढ़े बोलते हैं ना, हिंदी आती भोजपुरी में ही बोलते हैं है? लेकिन दिल से बोलते हैं, इसको रियलिटी कहते हैं, इसको योग कहते हैं, इसको जीवन कहते हैं, जियो तो अच्छी तरह से, समझा ना, अच्छी तरह से जियो। तो इस तरह से चारों तरह से धन्यवाद दे दें और आपको, और ये जो मैं कह रहा हूं यही नहीं जरूरी जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे, मैं तो आपको एक इशारा दे रहा हूं। हम लोग सोचते हैं कि इतना अच्छा सुना रहे हैं मैं भी ऐसे सुनाने लगूं, ये जैसे कह रहे हैं वैसे ही मुझे करूं, नहीं नहीं ये कुछ नहीं, कभी पकड़ो नहीं, कभी नकलची न बनो, अपना स्वयं जियो, अपना मार्ग चुनाव कीजिए, अपना रास्ता स्वयं बनाइए, स्वयं अपने में बहुत कुछ है आप, है ना, आप स्वयं में सब कुछ है, बाबा आप में इतना उम्मीदें रखता है, अपने को कमजोर क्यों समझते हैं। मैं इन बहनों को देखता हूं तो इनको लगता है देख करके, कभी भी हमेशा समझो कि मैं कोई कुमारी नहीं हूं, आज से कुमारी नहीं समझना अपने आप को, क्या समझना, मैं शिव शक्ति हूं, और नशे के साथ कभी उसमें नहीं रहो, अपनी सोच करो, मस्त रहो, आनंद से भरा हुआ जीवन होना चाहिए, ऐसा ना लोग लगे भाई अनुशासन ठीक है, अनुशासन ठीक है, जितना आत्मा आत्म अनुशासन में रहेंगे अच्छा है, लेकिन ये भान ही भूल जाए कि मैं कुमारी हूं, मैं लड़की हूं, मैं ये हूं, ये सब भान निकले अंदर से, ठीक है। और आप सब कोई एक्सरसाइज करो अच्छी तरह से, भोजन भी करो तो यही समझो कि बाबा के रथ को मैं खिला रही हूं, बाबा का रथ है मैं शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति करते ही शिव शक्ति का स्वरूप छलकना चाहिए। ये क्या है, मैं शिव शक्ति हूं, डर गई चूहा देखा डर गए, ये नहीं, शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति हूं, ठीक है ना। ये पांचों बात आपकी दिनचर्या के लिए बहुत जरूरी है जो मैंने बताया। अब आइए आपको मैं आज बताता हूं कि आप निद्रा मुक्त कैसे रह सकते हैं, ठीक है, पिछली बार रह गया था आपका। निद्रा मुक्त रहने की दो सबसे अनमोल विधि बताता हूं। निद्रा मुक्त रहने के लिए आपको एक तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रूप से अपने आप को तैयार करना है। एक्सटर्नल क्या है पहले वो बता देता हूं। सबसे पहले जब आप योग के लिए याद के लिए बैठें तो अपने मन में पक्का कर लें कि मुझे जितना नींद देना है उस शरीर को नींद पूरा देना है। अगर 6 घंटे नींद करना है मुझे तो कहीं से थोड़ा थोड़ा करके भी नींद करना जरूर है। खाना छोड़ दो, सबसे पहले जरूरी होता है नींद, फिर होता है भोजन। निद्रा और भोजन का बहुत अच्छा आपस में कनेक्शन है। कोई भोजन ज्यादा खाए तो उसको नींद की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जितना भोजन कम उतनी नींद की जरूरत कम, जितना भोजन बढ़ाओ भोजन बढ़ता जाता है, जितना नींद बढ़ाओ उतना नींद भी बढ़ती जाती है। ये बढ़ाओ तो बढ़ता जाता है, घटाओ तो घटता जाता है, इसलिए निद्रा और भोजन का बहुत गहरा संबंध है। कोई खूब खा ले रात को और अमृत वेला कहे बहुत अच्छा मैं योग कर लूं, मैं बताऊं सच बताऊं वो भले बैठ ले जबरदस्ती लेकिन आनंद नहीं आएगा। लेकिन यह भी नहीं है कि अमृत वेला अच्छा बनाने के चक्कर में आप सूखे जा रहे हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, वो भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। भोजन ले, थोड़ा अर्ली ले, सुपाच्य जो चीज हो वो ले, शरीर को चलाना हमको आना चाहिए। एक बार मैं बीमार हो गया, बीमार कुछ और नहीं, एसिडिटी हो गई, एसिडिटी बढ़ते 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 अल्सर हो गया। मैं किचन भोजन बनाया करता था, दादियों का भोजन बनाता था और सोने का समय कम मिलता था और भोजन पे ज्यादा ध्यान नहीं है, जो बचता था खा लेता था, खट्टा खाया मीठा खाया कुछ भी खाया, पेट साफ नहीं होता था, कब्जी हुआ करती थी। इन दिनों की बात, उन दिनों की बात है, आज से 25-30 साल पहले की बात है, 25 साल पहले की बात है। फिर ओम शांति भवन बाबा आए थे और बाबा बैठे थे खाली, सब पार्टी मिल गई थी, दादी तैयार होके जाने वाली थी, दादी उन दिनों में बीच में बाबा से मिले शुरुआत करा दिया, फिर बाबा दादी चली आती थी रेस्ट पे, और फिर जब बाबा के जाने का टाइम होता था पार्टी से मुलाकात होती तो दादी जाती थी। खाली था, मैं आगे कोच पे अकेले बैठा था, पीछे बहुत सारे लोग पार्टी के भाई बहने बैठे थे, बाबा की इशारा मिला ऐसे, मैं जाके बाबा के आगे बैठ गया। बाबा ने 10 मिनट तक बात किया। क्या बात किया? बीमार था उन दिनों में और लगभग फुल वही अपने एक्सट्रीम पर, अपने उस क्लाइमेक्स पर था। मैं रास्ता ढूंढ रहा था ठीक हो जाऊं, बाबा सामने बैठा था तो बाबा ने बुलाया। बैठा बाबा, बाबा ने कहा बीमारी क्यों है, कैसे आई, क्यों आई, शरीर क्या चाहता है, शरीर की डिमांड क्या है, इसको समझो, इसके नॉलेजफुल बनो। ये कोई पुराना कोई खाता वो नहीं है, शरीर के नॉलेजफुल बनो, जैसे और सबके नॉलेजफुल बने हो, जैसे सबकी दुआएं मिल रही हैं और सबकी दुआएं मिल रही हैं, नॉलेज भी नॉलेजफुल हो, वैसे शरीर के भी नॉलेजफुल बनो। शरीर को क्या चाहिए, बीमारी क्यों आई, उसकी भी नॉलेजफुल बनो। इसके नॉलेजफुल बन जाओगे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये बाबा ने कहा। मैं फिर आया, मैंने निर्णय लिया। बाबा ने जो कहा एसिडिटी अल्सर का कारण क्या है, उसका कारण देखा, पानी कम पीना, पेट साफ ना रखना, नींद पूरा ना होना, ज्यादा सोचना और ज्यादा सोचना, ये चार कारण, और भोजन को शुद्ध ठीक से खाना, सही समय पर खाना, ये चार पांच कारण थे जो मैंने देखा। मैंने विश्लेषण किया, मैंने ठीक किया और आज तक फिर कभी भी दोबारा बीमार नहीं हुआ। सलाद खाता था, एक महीने तक लिया, सवेरे तेल ओल कर की सब ये सब खाना बंद कर दिया, पानी पूरा पीने लगा, पेट साफ रखने लगा, ज्यादा सोचने लगा। रात को भी सो रहे हैं आप, इतने जगा दिया, देखो सुनो जाओ जाओ, तुम्हारा बुलावा आ गया, दादी बुला रही है जल्दी, बस धक 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 होने लगे हैं, अभी गाना गाना है तुमको, अरे अभी गाना लिखा ही नहीं, अभी क्या करें, वो डर के मारा एसिडिटी बढ़ जाती थी। तो ये वो लेवल था। जब उसको चिंतन किया, सोचा, समझा, बाबा ने जैसा कहा, सब ठीक हो गया। कहने का भाव ये है कि हम शरीर है हमारा, इसके नॉलेजफुल बने, इसको चलाना आना चाहिए। वस्तुओं में खोता क्या है अक्सर करके, जब तक समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। जब तक समझा जाए कि शरीर को क्या चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना, तब तक शरीर ही पूरा हो जाता है। हम सारा जिंदगी भर यही करते, क्या खिलाऊं, क्या खाऊं, कैसे सोऊं, कैसे करूं, इसी में जाता है। तो आप सब इसको करेंगे बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो निद्रा मुक्त रहना है तो सबसे पहले जरूरी है कि भोजन का संयम होना, भोजन संतुलित हो, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, इसको देखिए, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। ये कला अगर आ गई तो आपको जीने की कला आ गई। दूसरी बात इसके साथ जोड़ ले कि भोजन और नींद, जब पूरा भोजन ठीक ठाक रहे, कम भी नहीं, शरीर में क्या कितना आपको विटामिन देना है, प्रोटीन क्या देना है, शरीर को कितना चलाना है, कितना खाना है, कौन सा शरीर चलाए, तो इसको बैलेंस रखना कहते हैं। बैलेंस का एक सूत्र बताता हूं आपको, नोट करने लायक है, किसी संत ने कहा है बहुत अच्छा, ये बड़ा प्रैक्टिकल बैलेंस है। वो बैलेंस है, खाओ पियो चखो मत। खाओ पियो चखो मत, कहेंगे चखो ही नहीं तो खाएंगे इसे, है? चखने का मतलब है जीभ के पीछे मत भागे। खाओ पियो चखो मत, बोलो चालो बको मत। दूसरा सूत्र है बैलेंस का, बोलो चालो बको मत। बको माना ज्यादा बोलो नहीं, ज्यादा बोलना नहीं, बकवास नहीं, बोलो चालो बको मत। हालो चालो थको मत, हिलिए डुलिए, इतना तेज ना दौड़िए कि मुंह भर गिर जाइए, मिट्टी खाइए ना, हालो चालो, थको मत, इतना तेज न चलिए गिर जाइए और इतना धीरे भी न चलिए कि पहुंच ही न पाइए, ऐसा भी ना हो। तो हालो चालो थको मत, लियो दियो रखो मत, कोई आपको दे रहा है आने दो, आ रहा है तो आने दो और जा रहा है तो जाने दो, आ रहा है तो आने दो और जा रहा है तो हाँ, इसको कहते हैं साक्षी भाव। मैं देख रहा हूं, आते भी देख रहा हूं, जो ही देखो सब हमको गिफ्ट देते जा रहे हैं, इतना गिफ्ट इकट्ठा हो रहा है तो रखना लो, आ रहा है तो आने दो और कोई ले रहा है मांग रहा है तो जाने दो, जा रहा है जाने दो, आज सामान ये गुम हो गया जाने दो, कल वो गुम हो गया जाने दो, जाने दो, जो आया वो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर है ना, जो आया वो जाना है, चिंता ना करो, आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो। साक्षी होके देखो, बाबा कहते हैं संग्रह करके रखो नहीं, ये कल मेरे काम में आएगा, ये कल का करे, कल वो काम में आएगा कि वो काम में आएगा, कल ये काम में आएगा कि वो काम में आएगा, भाई ठीक है ना, कल वो काम नहीं आएगा जिसको मैं रख रहा हूं, कल वो काम में आएगा, ये पक्का करें। तो ये सूत्र है और अंतिम है, हाँ, लियो दियो रखो मत। पहला है खाओ पियो चखो मत, दूसरा है बोलो चलो बको मत, तीसरा है हालो चालो थको मत, और चौथा है लियो दियो रखो मत। ठीक है, हमारा याद रखना बात, ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो खाओ पियो चखो मत, बोलो चालो हालो चालो लियो दियो रखो मत, बहुत अच्छा, ये बैलेंस है। तो बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है और लाइफ ब्लिसफुल हो जाता है, हम अपने बैलेंस को बराबर बना के रखें। निद्राजीत बनने के लिए दो एक्सटर्नल बात है, आप बैठ जाएं हमारे साथ, जैसे बैठते हैं अच्छी तरह से, जो बैठ सके, ये जो बैठक है जिसमें जिसमें मैं आपके सामने बैठता हूं, ये बैठक बहुत अच्छा है, जो बैठ सके आराम से, जो न बैठ सके तकलीफ नहीं देना है। देखो भैया हमारा कितना पुरुषार्थ करा है, यहां आ जाओ आगे, ये छोटू छोटू इधर वाला, हाँ, नीचे नीचे बैठो, हाँ क्या बात है, बड़ा कमजोर है, दुबला पतला, वैसे आत्मा बड़ी मजबूत है इसकी, है ठीक है ना, ये ठीक है, बहुत अच्छा, ये जो बैठक है आसन ठीक है, अभी बैठ रहे हैं लेकिन धीरे धीरे करके हो जाएगा, ये घुटना भी ये रहे ऐसे रहे, बाबा देखो ना, बाबा बैठे हैं ना, हाँ, इसको अर्ध पद्मासन कहते हैं। इस आसन को, इस बैठे योगी के आसन बैठने पर आपको ना तो नींद आएगी और ना आलस्य आएगा, इसको बैठे बहुत ज्यादा टाइट भी ना हो जाए कि पीछे गिर जाएं, फिर तो उसे पीछे भी नहीं जाएंगे क्योंकि पकड़ा है ना आपने, हाँ देखो ये अच्छा स्टैंड है, ना आगे जा सकेंगे ना पीछे जा सकेंगे, ठीक है, ये बहुत अच्छा योग का आसन है। जब भी आलस लगे तो आप इस आसन बैठेंगे और सामने देखें, इस आसन बैठने पर आपको नींद नहीं आएगी, आप चाहे करके देखेंगे, आप जब दुखने लगे तो बदल दें, और दुखने लगे तो फिर और बदल दें, सीधा सामान्य बैठें, लेकिन जब भी आपको आलस लगे तो इसमें बैठकर देखेंगे। इसमें मैं घंटों तक बैठता हूं एक ही एक दृष्टि में, घंटों तक, इसमें कोई भी हमको परेशानी नहीं होती, ये निद्राजीत बनाने वाला आसन, क्योंकि इसमें हमारी हमारा मेरुदंड जो है रीढ़ रज्जू वो सीधा रहता है और ब्लड का सर्कुलेशन बराबर, जब झुक जाते हैं तो उसमें सिर में भारीपन आ जाता है और आलस में पहले होते हैं और हम ज्यादा सो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ऐसे करें और सामने देखें बाबा को, लगातार 1 से 3 मिनट तक देखें, लगातार पूरी आंखें खोल करके देखें। इस आसन में बैठने पर आपकी नींद आती भी होगी तो उड़ जाएगी, अगर आपने थोड़ा भी झपकाया, थोड़ा ढीले हुए फिर गए, इसलिए सावधान, ये मुद्रा जो है हमारी योग युक्त मुद्रा है, और कोच पे बैठने वाले, कुर्सियों पे बैठने वाले वो हमेशा खतरे में रहते हैं, उनको नींद समझो कभी भी आ सकती, थोड़ा भी लूज हुए और गए, ठीक है ना। तो जितना हो सके जिससे हमारी बहनें बैठी हैं, भाई जिसे बैठे हैं, ऐसे बैठना बहुत अच्छा है। नीचे बैठा जाए सबसे बेस्ट। मुझे तो ये सब पसंद ही नहीं, मैं तो हमेशा नीचे बैठता हूं या ऐसे बैठता हूं। अब सामने बैठना है तो बैठ लेता हूं, लेकिन अगर मैं पांवों को नीचे करके बैठूं तो मुझे लगा ही नहीं तो मैं योग में बैठा भी हूं। दादी ऐसे बैठे जिसे बैठे हैं आप, बड़ी दादी को मैंने देखा है, बड़ी दादियां ऐसे बैठती थी बाबा के आगे नीचे ओम शांति भवन में, बड़ी दादी वगैरह। ये बहुत अच्छा आसन है। दूसरी बात कि आंखें आपकी इस बैठक में और लगातार आप जितनी देर तक अपलक देखेंगे उतनी आंखें खुलती है। और अच्छा हो कि आंखें पूरा खुला करें, पूरी आंखें खुली, पूरी आंखें खोले। जिनको आलस अभी भी आ रहा है देखे, पूरी आंखें खोलेंगे तो ये जो है बैठक आपको निद्रा मुक्त बनाएगा। दूसरी बात है कि आंखों को अपने कम से कम कर लें, बहुत कम करें, मिनिमाइज करें। और आंखें खुली हैं कि नहीं खुली हैं पता भी नहीं लगे, लेकिन बंद ना होने दें। जो लास्ट है वो देखिए, ऐसे आप सामने नहीं देख रहे हैं, कुछ भी नहीं, केवल आंखें खुली हैं आपकी, आभास हो, लेकिन बंद ना होना चाहिए, जो लास्ट का है। इसमें बैठने पर आप देखेंगे कि जो हमारी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, हमारी शक्तियों का प्रवाह होता है, एनर्जी जो जाती है वो एनर्जी सेव हो जाएगी। और ये जो मस्तिष्क, जो ब्रेन थका थका लगता है ना, जो नींद न लेने की वजह से, आलस की वजह से खूब नींद आ रही, भारीपन है, वो सब इस स्थिति में बैठने के बाद इतना ठंडा हो जाएगा कि थोड़ी देर के बाद लगेगा जैसे कि आप कोल्ड स्टोर में आ गए हैं या समझो एसी रूम में आ गए एकदम। अगर इसमें आप 5 मिनट तक बैठ गए, 1 मिनट से 5 मिनट तक भी बैठ गए, तो कितनी भी नींद आएगी आपकी नींद उड़ जाएगी। ये दो स्टेज है, या तो फुल आंखें खोलो या तो आंखों को इतना मिनिमाइज करें, बंद ना होने दें। आप बहुत देर तक जो है आप ऐसे बाबा की याद बैठेंगे, सिर में कोई भारीपन भी नहीं और आंखें ऐसे हल्की खुली रहें, बंद ना हो। आप देख रहे हैं, कुछ सामने देख नहीं रहे, बस केवल अपने आप को आत्मा। इसी को जब त्राटक लोग करते हैं, जब यहां नाक के ऊपर भक्तिमय करते हैं तो यहां करते हैं, लोग देखते हैं ऐसे, इसको देखते हैं। लेकिन इसके यह ना देख करके ये महसूस करें कि मैं आत्मा यहीं पर हूं, हल्का हल्का सा। कोई तनाव नहीं, रिलैक्स एकदम। लगातार 3-4-5 मिनट तक कर लें, आपको घंटों तक फिर नींद नहीं आएगी। ठीक है, ये दो बहुत अच्छा सूत्र मैंने आपको बताया। तो एक तो पहले बैठक, ये बैठेंगे तो भी नींद नहीं आएगी। दूसरा सामने देखें, खुली आंखें रखें तो भी नींद नहीं आएगी। और आंखों को मिनिमाइज करेंगे, बंद ना होने दें तो भी नींद नहीं आएगी। और चौथी बात, अपने आप को जो मैंने कहा कि दाता बनकर के दें कि इस समय पर सारी दुनिया में कितने लोगों की हत्या हो रही होगी, कितने लोग कष्ट में होंगे, कितने भगवान को याद कर रहे होंगे, और बाबा कहता है बच्चे तुम अशरीरी बन जाओ, तुम्हारे द्वारा मैं साक्षात्कार करा लूंगा। बाबा जाके प्रकट नहीं होगा कहीं, किसी की मदद करनी होती है तो बाबा देखता है कौन बच्चा अशरीरी बनकर के बैठा है, उसके द्वारा मैं उसकी मदद कर दूं। तो बाबा आपके शरीर के द्वारा बाबा विश्व सेवा भी कराएंगे। और यहां से महसूस करें कि मैं आत्मा चली गई हूं, शरीर सहित चले जाओ, शुभ शरीर लेकर के बर्मा में पहुंच जाओ, और पहुंच करके वहां पर जिसे देवी होती है से खड़े हो जाना, ऐसे वहां जाके सबको सकास दीजिए। ये जो मैं शिव शक्ति हूं, मुझसे वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, सबको शांति की, शक्ति की, प्रेम की, आनंद की, पवित्रता की किरणें मिल रही हैं। ये जो अभ्यास है ये आपको तो भर ही देगा और आपसे अच्छे वाइब्रेशंस मिलेगा। जो सेवाएं हमारी रही पड़ी हैं वो भी हो जाएंगी, जो हम चाहते हैं वो भी हो जाएगा। तो ये मनसा सेवा भी हो जाएगा और आपको बाबा आपसे सेवा भी ले लेगा, आपका योग युक्त होना भी होगा और अमृत वेले आप बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है, पसंद आया आपको? पसंद आया तो एक बार ताली बजा के अपना अभिनंदन कर। और कुछ सूत्र बताता हूं। नींद आती है तो अपने आप से पूछना चाहिए पहली बात कि वो बताइए, अपने आप से पूछें कि एक मां का जवान लड़का अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो मां की हफ्तों हफ्तों की नींद कहां जाती है? कहां जाती है नींद? मां की नींद कहां जाती है? आती है मां को नींद? मां को नींद नहीं आती है ना? हाँ मम्मी बताओ, माताओं बताओ, ये हमारे मम्मियां बैठी हैं बोलो, होता है ना? एक घर में एक बच्चा, जवान बच्चा कहीं कुछ हो गया एक्सीडेंट, तो मां की नींद कहां जाती है? उड़ जाती है ना? हफ्तों हफ्तों की नींद नहीं आती है। क्यों? मोह है, मोह के कारण है, उसकी याद आती है उसकी नींद। तो ये है, हमारा बाबा से बड़ा प्यार है फिर हमको नींद क्यों? हमारा भी तो बड़ा बाबा हमारा बच्चा ही तो है। अच्छा, दूसरी बात, आपस में एक दूसरे से प्यार होता है तो रातों रात की नींद उड़ जाती है, बेचैनी होती है, तारे गिनते हैं, करवटें बदलते हैं, वो नींद कहां जाती है? मेरा भी तो बाबा से प्यार है, मैं कहता बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है और जब योग में बैठते हैं तो नींद आती है, ये क्या है? ऐसा भी कोई प्यार होता है? है? प्यार से नहीं आता। प्यार से नहीं। वो योग का नींद नहीं है, वो वियोग का नींद है। लेकिन नींद आ जाती है क्योंकि हमारा ध्यान नहीं जाता है। उस समय हम प्रेम के मूर्त बन जाए, बाबा के प्यार को याद करें, उसके उपकारों को याद करें, उसके एहसान को याद करें, आंखों में प्रेम के आंसू आए, बाबा अगर मैं अमृत वेला भी नींद करती रही, समय भी नहीं है, कब मैं करूं, कमाई का दिन कौन सा है, कैसे मैं करूं, ये मन में आना चाहिए। तीसरी बात, जब वहां पर बॉर्डर पे दुश्मन होते हैं, वहां पर चौकसी करते हैं, कोई सुसाइडर ना आ जाए, बम्बार्डर ना आ जाए, उस समय देखें तो उनकी आंखें खुली रहती हैं, अंधेरों में भी दिखाई पड़ता है बॉर्डर पर लगातार, हमारे भी चारों तरफ तो माया है, फिर हमको नींद क्यों? जब किसी दुश्मनी होती है तो रातों को नींद नहीं आती है, उनको लगता है कोई आ ना जाए, कोई मार ना दे मुझे, हमारी भी तो दुश्मनी है माया से, माया तो वही देखती है कब मौका मिले इनका, कब झुटका मारे और बस इनको मैं ले लूं। वो देखती है कि ऊपर से आपने जो तार बांधी है ना, वो तार कनेक्शन, वो पावर हाउस वायर आ रहा है, वो कैंची लेकर बैठी रहती है माया, जैसे आप करते हैं ना तो टाइट हो जाता है रस्सी, तो वो देखती है कि टाइट हो गया ना, बस कट कर देती है, जैसे ऐसे किया ना तो टाइट हो जाता है, तो टाइट हो जाता है, तो वो माया है वहीं पर कैंची लेकर कट से कट, लो अब हमारा काम बन गया, अब हमारा काम बन गया। तो वो देखते हमेशा देखिए कि बाबा के साथ मेरे संबंध जुटे हुए हैं और यहां तक माया पहुंच भी नहीं पा रही है और इतनी शक्तियां निकल रही हैं हमसे कि माया मेरे पास भी नहीं, जब मैं बैठूं याद में ऐसे बैठूं और मुस्कुराऊं। हां एक बात बहुत जरूरी है, ये चौथी विधि भी नोट कर लो, बैठें सामने देखें आंखें खुलें देखें, एक बार मुस्कुराएं, खूब मुस्कुराई, देखो कितना मुस्कुराते हैं, पूरा भले डुप्लीकेट सही लेकिन मुस्कुराइए, खूब मुस्कुराइए, क्योंकि ये मिलन की बेला है, बाबा से मगन होने की बेला है। आपको देखे तो कोई कहे रे ये योगी है, ये भगवान से मिल रहे हैं, ऐसे नहीं कि बड़ी कोई मुसीबत आ गई है, ये मुसीबत नहीं, योग में जो बहुत ऐसे करते हैं, बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि बात उनको देख करके लगता है कि ये योग कर रहे हैं पता नहीं क्या हालत है, बड़ी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो इसके बजाय हमारे चेहरे पर मुस्कान हो। पहली आप बैठे और बैठने के बाद ऐसे देखें बाबा को और मुस्कुराएं, सब कोई बैठे ऐसे, हमें नहीं देखना है, मैं नहीं देख रहा हूं, आप बैठे मुस्कुराइए बाबा की तरफ देखें, काश कि आपका कैमरे से फोटो लिया जाता, कितना अच्छा दिखाई पड़ता है ना। हाँ ऐसे बैठे, आज से सोच लीजिए कि जैसे मुझे योग में बैठना है ये मुद्रा मुझे बताया गया है और इस मुद्रा को छोड़ना नहीं। ये बैठना मुद्रा, सामने देखना, अलर्ट बैठना और मुस्कुराना, और ये देखना कि बाबा से मेरे ऊपर तार जुट गई है, बाबा से पावर आना शुरू हो गया। ऐसे जैसे बैठते हैं, जैसे मैंने बताया ना फाउंटेन के नीचे बाबा की किरणों के नीचे बैठ, ऐसी मुद्रा हो। इसमें नींद आएगी? इसमें नींद आ सकती है? अरे नींद तो दूसरों के भी भाग जाएगी। कोई बगल में बैठे हो और नींद करने वाला कहता है अरे यार इतना मुस्कुरा रहा है, इतना अच्छा है, तो हमको देखकर दूसरों की नींद उड़ जाए, इसको कहते हैं योगी जीवन, इसको कहते हैं योग। ये मैंने आपको कुछ बातें बताई जिसको कहते हैं एक्सटर्नल। अब आइए इंटरनल। इंटरनल तैयारी होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि आप आत्मचिंतन की गहराई में आ जाएं, इतनी गहराई में आ जाएं कि मैं इस शरीर से अलग हूं, जो मैंने आपको बताया, शरीर से अलग, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मदर्शन, आत्मअन्वेषण, आत्मविश्लेषण, आत्मसंशोधन, आत्मपरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, आत्मसंशोधन, आत्मपरिमार्जन, आत्मपरिवर्तन, ये सब जितना भी है ये करते रहिए एक एक दृश्य को, और ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। पूरे योग में ऊपर न जाओ, नीचे न जाओ, कहीं जाना नहीं, बस आत्मचिंतन में ही लग जाओ। इसमें देखें, ये शरीर एक सीप है, मैं आत्मा मोती हूं। सीप के अंदर जैसे मोती होता है, मैं एक मोती हूं सीप के अंदर। ये शरीर दीप है, मैं आत्मा इसमें ज्योति हूं, जैसे यहां पर ज्योति फ्लेम, जैसे कैंडल, पूरा ये पूरा कैंडल है, पूरा दीपक है, और इसमें मैं आत्मा फ्लेम जैसे चमक रही हूं। ऐसे ये शरीर दीप है, मैं आत्मा ज्योति हूं। ये शरीर वृक्ष है, पेड़ है, मैं आत्मा इसमें पुष्प हूं। ये आत्मा रथ है, शरीर रथ है, मैं इसमें रथवान हूं। जैसे हाथ में लगाम है, ऐसे मैं रथवान हूं, ये शरीर मेरा रथ है, मैं आत्मा रथी बैठा हूं। मस्तक, ये शरीर सर्प है, मैं इसमें मणि हूं। ये शरीर कुटिया है, मैं इसमें संत हूं। ये मठ है, मैं इसमें महंत हूं। ये शरीर डिबिया है, सोने की डिबिया में मैं हीरा जगमगा रहा हूं, मैं हीरा हूं। ये शरीर तरकस है, मैं इसमें तीर की तरह हूं। तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम बिन तो जैसे कलश में नीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम हो शरीर में है तो ये रोशनी कायम, तुम रूह हो बदन में तो है जिंदगी कायम, तुम बिन तो जैसे तरकश में तीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। है ना। इस तरह से आत्मचिंतन की गहराई में जितना जाएं उतना कम है। कभी मौका मिला तो मैं, अब मौका क्या मिलेगा, आप सब तो बहुत मुश्किल समय मिलता है, लेकिन आत्मचिंतन की गहराई इतनी जबरदस्त है, इसमें बैठे रहो। एक दो उदाहरण देता हूं और आपको इसके द्वारा पूरा करता हूं कि आप शरीर में बैठे हैं, इतने देर खड़े हैं कोई मैदान में, शाम का समय है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, पूरा शरीर है, आप आत्मा है, दूर से कोई देख रहा है आपको तो पूरे अंधेरे में शरीर नहीं दिखाई पड़ रहा है, जैसे आत्मा यहां जगमगा रही है, आत्मा रोशनी दिखाई पड़, दूर से दिखाई पड़ता है कि वहां कोई चिराग जल रहा है, कोई लैंप जल रहा है, कोई कैंडल जल रही है, कुछ लाइट है, लाइट कौन सी है, किसकी लाइट है वो पता नहीं, लेकिन लाइट दिखाई पड़ती है, शरीर दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे मैं अंधेरे में खड़ा हूं, मैं आत्मा केवल चमक रहा हूं, मैं सारा संसार मुझे देख रहा है, मैं आत्मा हूं। तो ये आत्मा की रोशनी आपको बहुत अच्छी लगेगा, और लगेगा जिसे अंधेरे में मेरा पूरा शरीर गल करके जिसे गिर गया हो थैले की तरह, मैं आत्मा केवल रह गया। ये स्मृति आपको बहुत मदद करेगी। एक स्मृति और कर सकते हैं, अपने शरीर के चारों तरफ एक लाइट का गोला बना लें और उसको छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, इतना छोटा कर दें कि जैसे वो छोटा होते 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 इतना छोटा कर लें कि पूरा शरीर सहित आप एक छोटी सी आत्मा बन करके उस बिंदु में समा गए, उस गोले में समा गए। इस तरह से आप अपने शरीर के देह के भान को गलाते गलाते, आप कम करते करते, छोटा करते करते आत्मा बिंदु बन सकते हैं। एक अभ्यास और है कि मैं आत्मा, इस शरीर रूपी राजधानी में मैं राजा हूं, ये शरीर रूपी मस्तक पर मैं आत्मा राजा बैठा हूं। आंखों के द्वारा जैसे मैं अपने महल में बैठा हूं, ये दरवाजे हैं, एक दरवाजा, दो दरवाजे, सात दरवाजे के अंदर मैं बैठा हूं, बीच में ऊपर से लाइट आ रही, फोर्स पड़ रही है, मैं आत्मा सिंहासन बैठा हूं, मैं इन खिड़कियों के द्वारा देख रहा हूं वहां दरवाजे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऐसे देखें कि मैं यहां बैठा हूं, इस मैं आत्मा शरीर में बैठा हूं और मैं आत्मा राजा देख रहा हूं, ये मेरी राजधानी है। इस भान में कि मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्म इंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से, अपने मन रूपी मंत्री से मैं मंत्रणा करता हूं, सलाह लेता हूं, पूछता हूं हालचाल ठीक है ना, राज में सब ठीक तो है ना। करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछें सजग संतरी से, मैंने अटेंशन रूपी पहरा लगा रखा है, मेरी इस राजधानी में माया के गुप्तचर, माया के कोई भी सैनिक, माया का कोई दुश्मन वो आ नहीं सकता है। करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछें सजग संतरी से, अटेंशन अटेंशन रूपी पहरेदार मेरे सावधान हैं, उनकी आंखें खुली हैं, चारों दिशाओं में देख रहे हैं, कोई माया के दुश्मन मेरी राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछें सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, बुद्धि रूपी राजा मेरे राजधानी का बड़ा अच्छा राजा है, बड़ा अच्छा न्यायाधीश है, जस्टिस बहुत अच्छा है, चीफ जस्टिस मेरी राजधानी का बड़ा अच्छा है। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की सेना सजग है जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाएं, सुसंस्कारों कि सेना सजग है जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्रु छाया, जो खोया था स्वराज फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिलके गाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रिया कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना लगाए। बाबा आते हैं, बाबा प्रैक्टिकल में दिखाते हैं, बाबा ऐसे रहते हैं सामने देखते रहते हैं। ये बाबा जो कहते हैं, ये पुरुष परम पुरुष प्रकृति को अधीन करके, ऐसा नहीं कि ऐसे हाथ ऐसे कर लो, ऐसे देख लो, ऐसे नहीं। बाबा बैठा है, पूरे शरीर को चला रहा है, इसमें बैठकर देखना है तो वही देखना है, सोचना है तो कर। बाबा ने कहा अच्छा अब क्या करना है। मुन्नी बहन उठती है, बाबा ये वर्मा वाले आए हैं। तो बाबा देखता है, ऐसे सुनता है, ऐसे नहीं ऐसे देखता है, ऐसे थोड़ी देर बाद सुनने के बाद क्या करता है, उठो वर्मा वाले उठो, ये बोलता है। ये क्या है, ये सजगता है। ऐसे नहीं कि हाथ कहीं जा रहा है, पांव कहीं है, सोए यहां है, जागे वहां पर है, ऐसा नहीं, बल्कि ये है कि पुरुष ने प्रकृति को अधीन किया है। वह आंखें तुम देखो, आंखें योग में बैठे हैं, ऑर्डर दे दे, है आंखों तुमको देखना है, बस बाबा को देखो, बस बुद्धि को ब्रेन को यहां अपने वर्क दे दें, अपने कर्मेंद्रियों को वर्क दें, हाथ को वर्क दें, इसको दें। हम जितना सजग होके इसको कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, ओम शांति। बैठ जाए। कैसा रहा तो आज के इस क्लास से? आप संकल्प करेंगे, मैं शुभकामना करता हूं, जब भी आप याद में बैठे वहां पर ऐसे महसूस करें कि मधुबन में मेडिटेशन हॉल में वहां पर सामने हम बैठ गए। और एक बात कहना चाहता हूं, आप सबके लिए शुभकामना हमारी है कि हम सब मधुबन निवासी आपके साथ में हैं। ठीक है, कभी भी अपने आप को अकेला न समझें। वर्मा के भाई बहने कहीं पर भी हैं, जो भी हैं, कभी भी अपने आप को अकेला न समझें, ये सोचिए कि हम आपके साथ में। एक मिनट। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि हमारी पांचों बात को जरूर ध्यान में रखें। एक तो स्वास्थ्य की संभाल करें, स्वास्थ्य की संभाल, एक्सरसाइज करें। दूसरे, शुभ भावना शुभकामनाएं बढ़ाते जाएं। तीसरा, सम्मान देते चलें। चौथा, समय का सदुपयोग करते चलें। और अंतिम बात है कि जितना हो सके शिव बाबा की याद में अपना अधिक से अधिक याद में मगन रहे। धन्यवाद। ऑप्शन